सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इमामी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के दोस्तों का, यह मुकामी मजलिस वहदत के और आप सब मोमिन अहलिया ने जाफर तैयार का। और दरअसल अपने रब करीम के शुक्र गुज़ार हैं कि उसने ये मौका दिया कि अहले बैत के मानने वालों की ज़्यारत हो रही है। इंशाल्लाह खुदावंद करीम हमें ये तौफीक दे कि इस महफ़िल में हमारा बैठना, इस महफ़िल में हमारा तफक्कुर और तदब्बर करना, इस महफ़िल में हमारा वक्त गुजारना ये अल्लाह की रज़ा के लिए हो और हमारे ज़माने के इमाम इंशाल्लाह ताला उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए। इंशाल्लाह पहला जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, बरादरान ने कहा कि चूँकि हमने एक सिलसिला शुरू करना है करंट अफेयर्स का कि हालात हैं क्या, आलमी हालात क्या हैं, पाकिस्तान के हालात क्या हैं, मकतब अहले बैत उसमें कहाँ खड़ा है, आप उसके अंदर कहाँ क्या रोल प्ले कर रहे हैं और हमें आइंदा किस सम्त में जाना है, हमारी डायरेक्शन और सम्त क्या होनी चाहिए ताकि हम अपने रोल को समझ कर उसको अदा कर सकें। तो ज़ाहिर है ये एक आध नशिस्त का काम नहीं है, इसके लिए नशिस्तें दरकार हैं और उस सीरीज़ का पहला हिस्सा आज दोस्तों ने शुरू किया है। इंशाल्लाह ताला इस सिलसिले को अल्लाह करीम मुबारक करेगा और मैं कुछ इब्तदाई चीज़ें सिर्फ आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। देखें हम अभी दुनिया के तारीख़ के ऊपर नहीं जाते। पहली बात यह है कि जब हम कहते हैं पाकिस्तान जिसके अंदर हम रह रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के हालात और वाकयात क्या हैं, तो दो तरह की निगाह है जिससे हमें ये वाकयात समझ में आए। एक कि हम पाकिस्तान के हालात की बुनियाद पर दुनिया के हालात को समझने की कोशिश करें, चूँकि पाकिस्तान में ये हो रहा है लिहाजा दुनिया में ये हो रहा है, चूंकि पाकिस्तान में वाकयात इस सम्त में जा रहे हैं तो दुनिया में इस सम्त में जा रही है। एक तरीका है, एक तरीका है नहीं, अगर हम दुनिया के वाकयात का फहम हासिल कर लें तो फिर हम पाकिस्तान को समझ सकेंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये दूसरा तरीका ज्यादा मौसर और हकीकी है, चूंकि पाकिस्तान दुनिया पर मौसर नहीं हो रहा लेकिन दुनिया पाकिस्तान के ऊपर मौसर हो रही है। बस अगर हमें दुनिया के अफेयर्स पता चलेंगे, दुनिया किस सम्त में जा रही है, दुनिया की डायरेक्शन क्या है, दुनिया में क्या चीजें हो रही हैं, तो पाकिस्तान हमें आज खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम किसी जजीरे पर नहीं बसते बल्कि दुनिया की उस बरादरी का एक पार्ट और हिस्सा हैं। जब हम दुनिया की बात करते हैं तो फिर अभी हम तारीख में नहीं जाना चाहते, हम रीसेंट तारीख के ऊपर आएंगे। तारीख जाहिर है दुनिया की बहुत ज्यादा है, इस्लामी तारीख भी बहुत ज्यादा है, लिहाजा हम रीसेंट तारीख के ऊपर के जिसमें मुमकिन है कि बाज़ लोग अभी पाकिस्तान में जो मौजूद हैं या आप में से भी कुछ लोगों को यौम पैदाइश उस उन तारीख की मुनासबत से होगी। मोमिनीन कराम ये जो दुनिया है इसके बारे में ये कहा गया है कि तीन तरह के इसके मराहल होते हैं। ये मैं वो बात कर रहा हूँ जिससे दुनिया के हालात को समझने के लिए दुनिया ने अपने पैरामीटर्स और मेयारात बनाए हैं। नंबर एक कि दुनिया के अंदर एक कसीरुल कुतबी सिस्टम होता है। कसीरुल कुतबी सिस्टम, चूंकि यहाँ बुजुर्गान भी तशरीफ रखते हैं थोड़ी सी तशरीह करता चलूँगा, यानी जिसमें दुनिया में ताकत के कई मराकज़ हों, ताकत के कई मराकज़ यानी दुनिया में जो ताकत के मनाबे और मराकज़ ममालक हैं वो एक से ज़्यादा हों, दो से भी ज़्यादा हों, इतने हों कि दुनिया के ममालक को एक रिलीफ का एहसास हो। आप कहेंगे जब दुनिया में ताकत के कई मराकज़ होंगे तो रिलीफ का एहसास कैसे होता है? रिलीफ का एहसास इस तरह होता है जिस तरीके से एक गांव में कई चौधरी हों तो एक चौधरी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। क्यों? उसे पता है कि अगर ये मेरे कंट्रोल में नहीं आया तो इसके पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है, दूसरा भी मनमानी नहीं कर सकता। क्यों? उसे पता है इसके पास तीसरा ऑप्शन मौजूद है, चौथा ऑप्शन मौजूद है, मेरे साथ नहीं, फलां के साथ ना, तीसरे के साथ नहीं, चौथे के साथ, इसके पास जगह है। लिहाजा जो कसीरुल कुतबी दुनिया है जिसे मल्टीपोलर कहते हैं उसके अंदर दुनिया में ताकत के कई मराकज होते हैं। अगर हम अभी कसीरुल कुतबी दुनिया को देखना हो तो मसलन जो जंग अजीम दूसरी है उससे पहले की दुनिया कसीरुल कुतबी है। मिसाल देता हूं, यूरोप में ताकत के कई मराकज थे जिनमें ताकत का एक मरकज जर्मनी था, ताकत का एक मरकज फ्रांस था, ताकत का एक मरकज इटली था, एशिया में भी ताकत के कई मराकज थे। जिनमें ताकत का एक मरकज जापान था, ताकत का एक मरकज तुर्की था, अमेरिका भी ताकत का एक मरकज था, तो दुनिया कई ताकत के मराकज में तकसीम थी। फिर जंग हो गई। जंग का नतीजा यह हुआ कि दुनिया ताकत के दो मराकज में बदल गई। इसे बाईपोलर सिस्टम कहा जाता है, इसे दो कुतबी निजाम कहा जाता है। दो सिस्टम के अंदर चली गई, दो ब्लॉक्स के अंदर चली गई, और आप में से अक्सर बुजुर्गान को उन दो ब्लॉक्स का अच्छा शऊर है। एक ब्लॉक चूंकि जर्मनी तबाह हो गया, इटली शिकस्त खा गया, तुर्की उसके टुकड़े टुकड़े और हिस्से बखरे कर लिए गए, जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी तो पहले ही हो चुका था, लेकिन जापान जो है वो एक तबाही के मरले से गुजर चुका था, तो कोई भी इनके अंदर ताकत नहीं थी, ये सारे सरेंडर कर गए। ताकत के दो मराकज डिवेलप होना शुरू हुए, एक ताकत का मरकज अमरीका, एक ताकत का मरकज रूस। अमेरिका ने भी दुनिया के ऊपर अपना तसल्लुत बढ़ाना शुरू कर दिया और रूस ने भी दुनिया के ऊपर अपना तसल्लुत बढ़ाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने दुनिया को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम दिया, चूंकि दुनिया कंट्रोल नहीं होती है जब तक एक सिस्टम न दिया जाए, और रूस ने भी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम दिया। रूस चूंकि शर्क में था, लिहाजा ये शर्की ब्लॉक कहलाया। अमेरिका चूंकि गर्ब में था, लिहाजा ये गर्बी ब्लॉक कहलाया। दुनिया दो ब्लॉक्स में चली गई, शर्की ग्लॉक में या गर्बी ब्लॉक के अंदर। बस दुनिया में ऑप्शंस कम हो गए, दुनिया दो कुतबी चली गई, कसीरुल कुतबी से दो कुतबी, ऑप्शंस कम हो गए। गोया एक गांव में दो चौधरी हैं, दो बड़े हैं, दो वडेरे हैं, या इस वडेरे के साथ चलना है या उस वडेरे के साथ चलना है। दोनों वडेरों को पता है कि अगर ये उसके साथ नहीं चलेगा तो ये मेरे साथ चलेगा, इसके पास कोई तीसरा ऑप्शन, तीसरा रास्ता नहीं है। इसमें एक खतरनाक तरीन कैफियत यह होती है कि मुल्कों का अपने ऊपर से, मिल्लतों का अपने ऊपर से इनेसार खत्म हो जाता है। वो ये समझते हैं खुद से जिंदा नहीं रहा जा सकता, खुद से बाय एक तकरीम की कौम के तौर पे नहीं डेवलप हुआ जा सकता, लिहाजा वो क्या करते हैं, वो किसी का साये में आना चाहते हैं, किसी की गोद में आना चाहते हैं, किसी के नीचे आना चाहते हैं। नतीजतन वो या इस ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे या उस ब्लॉक का, या अमरीकी ब्लॉक का या रशियन ब्लॉक का, या शर्की ब्लॉक का या गर्बी ब्लॉक का, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं यहां बहुत अहम नुकरे की तरफ आना चाह रहा हूं। दोनों ब्लॉक्स में लड़ाई है, कितनी लड़ाई, इतनी लड़ाई, अगर अमेरिका जौहरी तजर्बा करता है तो रशिया भी जौहरी तजर्बा करता है, अमेरिका बैनुल बर्रयाजमी मिजाइल का तजर्बा करता है तो रूस भी बैनुल बर्रयाजमी मिजाइल का तजर्बा करता है, अमेरिका अगर चांद पर भेजता है सैयार अपने कोई तो रूस भी चांद के ऊपर भेजता है, अमेरिका खला के अंदर सैटेलाइट भेजता है तो रूस भी खला के अंदर सैटेलाइट भेजता है। हर चीज में कंपटीशन शुरू हो। अमेरिका बढ़ते बढ़ते कहां तक चला गया, अमेरिका बढ़ते बढ़ते रूस के बॉर्डर यानी अफगानिस्तान तक आ गया, आपके अपने इलाके तक आ गया। अफगानिस्तान में जो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट थी वो रशिया के बॉर्डर के ऊपर थी, चूंकि दूसरी तरफ रशिया था उस वक्त, ये रशियन स्टेट्स थी, और रशिया डेवलप होते होते कहां तक चला गया, रशिया अमेरिका के बॉर्डर यानी हवाई तक चला गया, क्यूबा तक चला गया। क्यूबा हवाई जो अमेरिका की एक रियासत है उसके आमने सामने, दोनों हालत जंग में, दोनों के अंदर एक कंपटीशन है, दोनों दुनिया के ममालिक पे तसल्लुत हासिल करना चाहते हैं, दोनों का हदफ दुनिया पर कंट्रोल करना है, दोनों का हदफ वेलफेयर नहीं है, दोनों का हलफ मजमूम जो मजलूमीन है वो नहीं है, दोनों का टारगेट पिसे हुए तबकात नहीं है कि उनको खड़ा करना है, दोनों का टारगेट है कि दुनिया पर हमारा तसल्लुत ज्यादा से ज्यादा हो, दुनिया पर हमारा कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा, दुनिया हमारी मर्जी के मुताबिक चले, दुनिया के वसाइल से हम ज्यादा इस्तेफादा करें, दुनिया के पोटेंशियल हमारे पास हो, दुनिया के जराए आमदन हमारे पास हो, हम दुनिया को कंट्रोल करें, हम दुनिया के वडेरे हो, ये कंपटीशन है। अब चूंकि कंपटीशन के लिए सिस्टम देना पड़ता है, जैसे मैंने अर्ज किया जो अमेरिका ने सिस्टम दिया था उसे दुनिया कैपिटलिज्म या सरमायादाराना निजाम के तौर पर जानती है, उसने अपने मातहत या अपने जेर असर ममालक को इस सिस्टम में जकड़ना शुरू किया। रूस ने भी सिस्टम दिया जिसे दुनिया कम्युनिज्म के नाम से जानती है, उसने दुनिया को इस सिस्टम के तहत जकड़ना शुरू किया। फिर आता हूं, आपने कहा हर चीज में हालत जंग में है, साइंस में हालत जंग, टेक्नोलॉजी में हालत जंग, सियासत में हालत जंग, इकानमी में हालत जंग, नफूज में हालत जंग, एक्सपेंशन या तोसी में हालत जंग, ज्यादा से ज्यादा मुल्कों पर कंट्रोल करने के हवाले से हालत जंग, हर चीज में जंग है, एक चीज पे दोनों मुत्तफिक हैं और वो चीज है मजहब। अमेरिका कहता है या कैपिटलिज्म कहता है या गर्बी बलाक कहता है कि मजहब आपका जाती मामला है, उसका आपके इक्तसाद से कोई ताल्लुक नहीं, उसका आपकी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उसका आपके मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं, उसका आपके खारजा अमूर से कोई ताल्लुक नहीं, उसका आपके दाखला अमूर से कोई ताल्लुक नहीं, उसका आपके सोशल सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं। वो क्या है? आपका पर्सनल मैटर है, जाती मामला है। जाती मामला यानी क्या? यानी अगर मैं मुसलमान हूं तो मेरा जाती मामला है कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चला जाऊं, बस। अगर मैं ईसाई हूं तो मैं इतवार के दिन चर्च चला जाऊं। अगर यहूदी हूं तो जो उनका सिनागॉग होता है उधर चला जाऊं। बस ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन आपके दीन का आपकी सियासत पे कोई असर नहीं है, आपके दीन का आपके इज्तिमा पे कोई असर नहीं है, आपके दीन का आपके रोजमर्रा अमूर पे कोई असर नहीं है। ये अलग है और वो दुनिया अलग है। रशियन बलाक क्या कहता था कैपिटलिज्म के बाद? कम्युनिज्म क्या कहता था? वो कहता था दीन अफ्यून है। अफ्यून क्या करता है? जिस्म को तबाह कर देता है, जिस्म को खोखला कर देता है। का दीन अफ्यून है। जैसे दीन, जैसे अफ्यून जिस्म को खोखला करता है, ऐसे ही दीन इंसान को खोखला कर देता है। लिहाजा जैसे वो नुकसानदेह ऐसे ये नुकसानदेह। अब जरा आप हैरान होंगे, हर चीज में हालत जंग में है, हर चीज में कंपटीशन और लड़ाई है, एक चीज पे इत्तफाक है। ये भी दीन के मुकाबले में खड़े हैं और वो भी दीन के मुकाबले में खड़े हैं। ये भी दीन को फेल कहते हैं, वो भी दीन को फेल कहते हैं। ये भी कहते हैं दीन का आपके सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं, वो भी कहते हैं दीन का आपके सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं। ये वो वक्त है जब इनके दरमियान लड़ाई है, लड़ाई में दीन के मसले पर इत्तफाक है और बाकी सारी मसलों पर जंग है। ऐसे में एक मकतब खड़ा होता है जिस मकतब की जिम्मेदारी इस कायनात को अदल और इंसाफ से दोचार करने की है। वो मकतब एक स्टैंड लेता है और उस स्टैंड की बुनियाद पर वो दुनिया के अंदर एक परचम बुलंद करता है। और ये परचम उस हिस्ट्री में एक ऐसा नया परचम है जब दुनिया में बावर ही यही है कि या हमें इस ब्लॉक में या उस ब्लॉक में रहना है, आजाद जिंदगी कोई है ही नहीं, या इसकी गुलामी में रहना है या उसकी गुलामी में रहना है। ऐसे में एक मकतब खड़ा होकर कहता है ला शर्किया वला गर्बिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम न शर्की निजाम को मानते हैं न गर्बी निजाम को मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम दीन के निजाम को मानते हैं, खुदा के निजाम को मानते हैं। हम अपनी सियासत करेंगे, हम दीन के ऊपर चलेंगे, हम अपने इज्तमाइयात करेंगे, हम अपने इक्तसाद करेंगे, हम मुल्क चलाएंगे, हम फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे, हम खारजा पॉलिसी बनाएंगे, हम दाखला पॉलिसी बनाएंगे, हम इक्तसादी, हमारी हर चीज हमारे दीन के ताबे होगी। न सिर्फ ये कि ये परचम बुलंद होता है, बल्कि ये परचम कहता है हम ना अमरीकी ब्लाक के अंदर जाएंगे, ना हम रूसी ब्लाक के अंदर जाएंगे, हम अपने खुदा के ब्लाक के अंदर जाएंगे, अपने खुदा के निज़ाम के तहत जाएंगे। और यूं दुनिया को खड़े होने का एक नया हुनर सिखाया जाता है। ये चेंज आ रही है, दोनों का कंपटीशन है, एक नया कंपटीशन आ गया। इस कंपटीशन चलते हुए उन दोनों के कंपटीशन में चूंकि या इस सिस्टम ने टूटना था या उस सिस्टम ने टूटना था, दुनिया देखती है कि कम्युनिज्म का ब्लॉक टूट गया, रूस टूट गया। और इमाम खुमैनी उस मर्द मुजाहिद ने, आपको याद है इमाम को कहा गया कि चूंकि अमरीका से मुकाबला है तो रूस के साथ अच्छी बनाकर रखें, इमाम का नहीं, ये नहीं हो सकता, और कहा कि ये रशियन कम्युनिज्म ये अजायब घर के अंदर मिलेगा। आज दुनिया जानती है उस मर्द कलंदर का वो एक एक हर्फ साबित हुआ है, आज कम्युनिज्म अजायब घरों के अंदर मिलता है। अच्छा, तो दुनिया क्या हो गई? जब दो कुतुबी से एक कुतुब गिर गया बकौल उनके, एक ब्लाक ने शिकस्त खा ली, तो दुनिया क्या होगी? यक कुतुबी। यानी अब ताकत का एक मरकज है। ये वो मरला है जिसमें अभी अमरीकी इस्तेमार ये एहसास नहीं कर रहा कि उसके मुकाबले में एक ताकत खड़ी हो गई है, उस तरह एहसास नहीं कर रहा। अमेरिका ने पूरी दुनिया में ये डिक्लेयर कर दिया कि हम हैं दुनिया के अकेले चौधरी, हम हैं दुनिया की सुपर पावर, हम हैं दुनिया को कंट्रोल करने और चलाने वाले। लिहाजा इस मौके पर उन्होंने दुनिया को चलाने के लिए जो सिस्टम दिया, कहा एक वर्ल्ड ऑर्डर दिया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो आपने फिक्रा बहुत सुना होगा। ये वो मौका है जब अमेरिका ने ऑफिशियली, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ऐलान किया कि दुनिया एक कुतबी हो गई है, हम दुनिया के इस वक्त बड़े हैं, हम दुनिया की सुपर पावर हैं, और चूंकि हम सुपर पावर हैं लिहाजा दुनिया को हमारे फैसलों पे चलना होगा, हमारे कमांड एंड कंट्रोल के तहत चलना होगा। अब हम दुनिया को एक कानून दे रहे हैं, एक जाब्ता दे रहे हैं, इस जाब्ते के मुताबिक दुनिया ने जिंदगी बसर करनी होगी। इस जाब्ते का नाम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रखा गया, एक इक्तसादी जाब्ता दिया गया उसका नाम न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर रखा गया, कुछ इंस्टीट्यूशन बना दिए गए जिनमें वर्ल्ड बैंक है, जिनमें IMF है, जिसके जरिए पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का एक सिस्टम शुरू हो गया और यूं अमेरिका ने दुनिया की वाहिद सुपर पावर होने का ऐलान कर दिया। अच्छा, एक और बात करते हुए इन दोनों को जोड़ूंगा तो हमें पाकिस्तान समझ में आना शुरू हो जाएगा। दुनिया में जो ताकतें हैं ना, पावर्स, उसकी तकसीम कुछ इस तरह करते हैं। एक मुल्क की ताकत होती है, यानी वो मुल्क इतना पावरफुल है कि वो एक स्ट्रांग मुल्क है, लिहाजा वो अपने दाएं बाएं कुछ मुल्कों के ऊपर मुअसर है। ये क्या है? ये नेशनल पावर है। उससे ऊपर रीजनल पावर, एक पूरे रीजन के ऊपर असरअंदाज होता है वो मुल्क, एक खित्ते के ऊपर असरअंदाज होता है, खित्ता कई ममालिक पर मुश्तमिल होता है। इससे ऊपर वर्ल्ड पावर जो पूरी दुनिया के ऊपर मुअसर होती है, इसके ऊपर सुपर पावर जो सबसे ऊपर होती है। यहां कंपटीशन क्या है? जो नेशनल पावर है वो क्या चाहती है? वो रीजनल पावर बने। जो अपने मुल्क में ताकतवर है वो चाहता है वो कई ममालक पे ताकतवर हो। जो रीजनल पावर है वो क्या चाहती है? वो वर्ल्ड पावर बने, वो दुनिया के अंदर मुअसर हो। जो वर्ल्ड पावर है वो क्या चाहती है? उसके सामने क्या टारगेट है? वो सुपर पावर बने, अकेली दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने। अब आप देखिए, हर एक के सामने एक टारगेट है और कहा यह जाता है कि अगर एक नेशनल पावर रीजनल नहीं बनना चाह रही, यानी उसका ट्रेंड ऊपर जाने का नहीं है, तो फिर वो डिक्लाइन कर रही है, फिर उसके अंदर इन्हितात आ रहा है, फिर वो कमजोरी और तनाजुल का शिकार हो रही है। अगर एक रीजनल पावर वर्ल्ड पावर की तरफ नहीं जा रही तो फिर वो क्या हो रही है? वो टूट रही है, वो दरअसल नेशनल पावर की तरफ जा रही है। अगर एक वर्ल्ड पावर जो है वो सुपर पावर की तरफ नहीं जा रही तो वो भी फिर नीचे की तरफ जा रही है, वो भी अपने आप को मेंटेन नहीं रख रही। हर एक के सामने एक टारगेट है। आपसे पूछता हूं, सुपर पावर के सामने क्या टारगेट है? उससे ऊपर कोई ताकत है? दुनिया के एतबार से बात करो, कोई ताकत नहीं है। उसके सामने क्या टारगेट है? उसके सामने टारगेट यह है कि वो अपनी सुपर पावर का स्टेटस बाकी रखे। उसके सामने कोई और टारगेट नहीं है, वो खुद टारगेट है, मेरा ये स्टेटस बाकी रखे। बस स्टेटस क्या है? जो मैं कहूं वो हो, जिससे मैं रोकूं रुक जाए, जो तब्दीली मैं चाहूं वो आ जाए, जो मेरे मुकाबले में खड़ा हो उसका इक्तसादी बायकॉट भी हो जाए, उसका सियासी बायकॉट भी हो जाए, उसका इंटरनेशनल बायकॉट भी हो जाए, उसके ऊपर जंगें भी मुसल्लत हो जाएं, वो खौफ ज्यादा हो जाए, वो मेरे मुकाबले में खड़ा ही ना हो सके। ये सुपर पावर चाहती है ना, बाई नेचर ये चाहती है। मतलब ये है कि उसे कोई नो ना करे, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो। सुपर पावर ये कहती है जो मैं कहूं दुनिया उसी तरह चले, दुनिया का ऑर्डर और कानून उसके तहत चले। नीचे वाली हर पावर के सामने एक टारगेट है। अब अगर सुपर पावर अपने उस जाब्ते पे अमल न कर सके, अगर जो कहे उस पर अमल न कर सके, जो चाहे वो अमली न कर सके, अगर वो पूरी दुनिया पर अपना कमांड एंड कंट्रोल न चला सके, तो इसका मतलब यह है कि वो सुपर पावर नहीं रही, बल्कि वो अब नीचे आना शुरू हो गई है, उसके अंदर डिक्लाइन शुरू हो गया है, उसके अंदर इनेताद आना शुरू हो गया है, वो तोड़ फोड़ का शिकार होना शुरू हो गई है। चूंकि किसी ने उसको नो करना शुरू कर दिया है, किसी ने उसको चैलेंज करना शुरू कर दिया है, किसी ने उसकी ताकत के मुकाबले में खड़े होना शुरू कर दिया है, ये जो कैफियत होती है ये एक सुपर पावर के लिए मौत के बराबर होती है। और आज मैं आपको अर्ज करूं कि वो जो दुनिया को सुपर पावर कहते थे और वो जो दुनिया को एक सिस्टम दे रहे थे, वो जो दुनिया को एक खास कमांड एंड कंट्रोल में रखना चाहते थे और रख रहे थे, उनके मुकाबले में एक आइडियोलॉजी खड़ी हो गई है, उनकी लीडरशिप के मुकाबले में एक लीडरशिप खड़ी हो गई है, उनकी रहबरियत के मुकाबले में एक रहबरियत आ गई है, उनके निजाम के मुकाबले में एक निजाम आ गया है, उनके सिस्टम के मुकाबले में एक सिस्टम खड़ा हो गया है जिसने उनको हर तरह से चैलेंज देना शुरू कर दिया है। और वो चैलेंज ऐसा है कि अगर कोई एक मैदान लगा है और इस मैदान में एक बात सुपर पावर ने की है और एक बात उसके मुकाबले में खड़े होने वाले सिस्टम ने की है, तो दुनिया ने देखा है सुपर पावर फेल हुई है, वो सिस्टम कामयाब हुआ है, तो पता ये चला है सुपर पावर को किसी ने तोड़ दिया है, किसी ने उसमें सुराख कर दिया है, किसी ने उसमें डेंट डाल दिया है। अब वो सुपर पावर नहीं रही, ये डेंट किसने डाला है, ये سوراخ کس نے کیا ہے، یہ چیلنج کس نے کیا ہے؟ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے خداوند کریم کے لطف سے، اگر اس سسٹم کے مقابلے میں ایک سسٹم کھڑا ہوا ہے تو اس سسٹم کا نام سسٹم ہے ولایت فقیہ ہے، اگر ان کی رہبریت کے مقابلے میں ایک رہبریت کھڑی ہو گئی ہے تو اس ہستی کا نام سید علی خامنائی ہے، اور اگر ان کے مقابلے میں ایک مکتب کھڑا ہو گیا ہے استعماری نظام کے مقابلے میں، اس مکتب کا نام مکتب محمد و آل محمد ہے، اور خدا کا شکر ہے ہم سب کا تعلق اسی مکتب کے ساتھ. اب آپ کہیں گے کہ آصف یہ بات لفظوں میں تو ٹھیک ہے، عملاً کہاں ہوئی ہے؟ کہاں امریکہ چیلنج ہوا ہے؟ کہاں امریکہ کی خواہش پوری نہیں ہوئی؟ اگر ہم کہیں آج کی سب سے بڑی طاقت، تو بلا مبالغہ دنیا کی طاقتوں کے اعتبار سے ہمیں کس کو ماننا پڑے گا؟ سب سے بڑی پاورفل کنٹری کون ہے؟ امریکہ کو، اور اس کے نیچے ظاہر ہے مختلف کنٹریز ہیں، یورپ بھی اسی کی اطاعت کر رہا ہے، مسلمان ممالک میں بھی بدقسمتی کے ساتھ 40 کے قریب ملکوں نے ٹرمپ کی سربراہی میں اجلاس کر کے دراصل اپنے آپ کو اسلام امریکائی ثابت کر دیا، تو وہ سارے اسی چینل پہ فال کرتے ہیں. اچھا تو ہم کہتے ہیں کوئی ہمیں دکھائے نا کہ یہ ایک کام انہوں نے کہا اور نہ ہوا ہو، تو ہم مان لیں کہ سپر پاور کے مقابلے میں کوئی اور پاور آ گئی ہے. تو آئیں ہم چند چیزیں صرف ایک ایک کر کے گزرتے چلتا ہوں، ابھی تازہ ترین واقعہ دیکھ لیتے ہیں. امریکہ نے کہا ہم یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت بنا رہے ہیں اور ہم اپنا سفارت خانہ وہاں شفٹ کر رہے ہیں. 200 سے زیادہ دنیا کے ممالک ہیں، اور 200 سے زیادہ ممالک میں انہوں نے کہا جو ملک ہماری بات نہیں مانے گا ہم اس پر پابندیاں بھی لگائیں گے اور اس کی امداد بھی بند کریں گے. یہ سارے تھریٹ دینے کے بعد اور ایک چیلنج دینے کے بعد جب پہلا یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہوا تو پتہ چلا کہ پوری دنیا فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور صرف 7 یا 8 وہ ممالک کہ جن کا ٹوٹل ملا کے بھی آپ کے ملیر کے برابر شاید نہ بنتا ہو سائز، وہ ممالک جن کو شبھی کبھی دنیا کے کسی ملک نے دیکھا ہی نہیں ہے، سنا ہی نہیں ہے، صرف سمبالیکلی وہ ممالک ان کو کہا جا سکتا ہے، انہوں نے حمایت کی. یعنی 200 سے زیادہ ممالک کے فورم کے اندر 200 ممالک ایک طرف کھڑے ہو گئے اور امریکہ تنہا ہو گیا. گویا ثابت ہوا ہے امریکہ سپر پاور نہیں رہا، کسی نے اس کو چیلنج دے دیا. فلسطین میں چیلنج دینے والا کون ہے؟ تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے. اچھا امریکہ نے کہا، کنڈولیزا رائس صاحب کو یاد ہوگی، اس نے کہا نیا مڈل ایسٹ بنے گا، نیا مشرق وسطی بنائے گا جو ہماری مرضی کے مطابق بنے گا، اور یہ جو مڈل ایسٹ کی جنگ ہے جس میں حزب اللہ کے خلاف جنگ مسلط کی گئی تھی، یہ نئے مشرق وسطی کی برتھ پین ہے، پیدائش کی تکلیف ہے. اچھا آپ نے کہا نیا مشرق وسطی بنے گا. ایک مرد قلندر نے جو اسی نظام کی اطاعت کرتا تھا، جسے دنیا سید حسن کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں کہ نیا مشرق وسطی بنے گا، لیکن یہ نیا مشرق وسطی وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہتے ہیں، یہ نیا مشرق وسطی وہ ہوگا جو ہم چاہتے ہیں. اور یہ بات ہے 2005 کی، آج ہے 2018، 13 سال بعد ہر سال یہ ثابت ہوا ہے امریکہ کی بات فیل ہوئی ہے، ناکام ہوئی ہے، اور اس مرد قلندر کی بات ثابت ہوئی ہے. آج لبنان کو ان کی مرضی کے مطابق بدلا گیا ہے، سیریا کو ان کی مرضی کے مطابق بدلا گیا ہے، عراق ان کی مرضی کے مطابق ڈھلا ہے، اور پوری مشرق وسطی الحمدللہ ری شیپ ہوا ہے. تو وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا، آپ کی مرضی کے مطابق ہوا ہے. صلوات پڑھیے. یہ حقیقتیں ہیں. کیا 2.5 لاکھ دہشت گردوں کو شام میں نہیں بھیجا گیا؟ کیا نیٹو، یورپی یونین، یونائٹڈ نیشن، امریکہ، یورپ، پھر مسلم ممالک جن میں عرب کنٹریز، جن میں ترکی، جن میں دیگر کنٹریز، سارے مل کر یہ چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے کہ بشر جائے؟ کیا سب نے مل کر وہاں داعش کو لائے یا نہیں لائے؟ کیا سب نے وہاں مل کر سیدہ زینب پر قبضہ کرنے کی، حملہ کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ ان کو دنیا کی عسکری حمایت بھی حاصل ہے، سیاسی حمایت بھی حاصل ہے، میڈیا کی حمایت بھی حاصل ہے، مین پاور کی حمایت بھی حاصل ہے، ملٹریز کی حمایت بھی حاصل ہے، دہشت گردوں کی حمایت بھی حاصل ہے. اس کے مقابلے میں صرف ایک کال دیا سید علی خامنائی نے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ باقی رہے گا. آج کیا ہوا ہے؟ امریکہ جس نے چیلنج دیا تھا کہ یہ نہیں رہے گا، وہ امریکن پریزیڈنٹ آج پریزیڈنٹ ہے؟ नहीं है। वो तुर्की का वज़ीर आज़म जिसने ये चैलेंज दिया कि नहीं रहेगा, आज वो वज़ीर आज़म है नहीं है। वो सऊदी अरब का बादशाह अब्दुल्ला जिसने कहा था कि ये तब्दीली आएगी आएगी, आज वो बादशाह है नहीं है। वो अली अब्दुल्ला साले जो उनके साथ था, आज है नहीं है। आज कौन है खित्ते के अंदर, कौन है इराक के अंदर, कौन है सीरिया के अंदर, कौन है लबनान के अंदर, कौन है ईरान के अंदर, कौन है यमन के अंदर? ये सारी ताकतें मिलकर भी एक इंच अपने मकासद हासिल नहीं कर सकी, और खुदा की ताकत पर भरोसे के नतीजे में निज़ाम विलायत फकीह के मानने वालों ने इनको बदतरीन शिकस्त से दोचार करके ये साबित कर दिया है आइंदा की दुनिया भी बाईपोलर है, यूनिपोलर नहीं है। इस वक्त दुनिया एक कुतबी नहीं है, दो कुतबी है। और आज की दुनिया में अगर एक कुतब को अमरीका लीड कर रहा है, उसकी सरबराही के अंदर कुछ मुसलमान ममालिक भी हैं, उसकी सरबराही में यूरोप भी है, तो उनके मुकाबले में अगर मुस्तज़फीन खड़े होना शुरू हुए हैं तो उसकी लीडरशिप का रोल अल्हम्दुलिल्लाह मक्तबे मोहम्मद वाले मोहम्मद के पास आप है जो उनको चैलेंज कर रहे हैं। मुख्तसर बात पाकिस्तान के हवाले से करके एंड करता हूं। पाकिस्तान जाहिर है हम उसी सिस्टम का एक पार्ट है, मौजूदा हालात भी आपके पेश नज़र है, तो फौरन ये सवाल जेहन में आता है हम इस इक्वेशन में कहाँ खड़े हैं, आलमी सफबंदी के अंदर हम कहाँ खड़े हैं, हम किस ब्लाक का हिस्सा है, उसके अंदर मकतब अलवैत कहाँ खड़ा है, हमें किस ब्लाक का हिस्सा होना चाहिए, कैसे हम ये रोल प्ले कर सकते हैं, इस वतन को कैसे बचा सकते हैं। मैं पहले ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक ख़ास जोग्राफिया रखता है। पाकिस्तान के चंद ख़ास इम्तियाजात हैं। नंबर एक, मकतब अहल बैत की दुनिया में शायद बाद ईरान सबसे ज़्यादा तादाद अगर किसी मुल्क में बसती है तो वो पाकिस्तान। एक और इम्तियाज, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो शिया और सुन्नी ने मिलकर बनाया और इस्लाम के नाम पर बना। एक और इम्तियाज, पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में वाक़िया है जिसकी एक तरफ चीन है और एक तरफ ईरान है। इसके एक बाजू में अगर पाकिस्तान के दो फ्लैंक्स बनाए, एक बाजू चीन है एक बाजू ईरान है। पाकिस्तान एक ऐसे जुग्राफिया में बसता है, आपके इलम में होगा बिलखसूस जो लोग इंटरनेशनल रिलेशन को समझते हैं, हम अमूमन कहा करते हैं दुनिया में दोस्त बदले जा सकते हैं, अलाइज और इत्तहादी बदले जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, उसी के साथ रहना पड़ता है। तो खुदा ने पाकिस्तान को एक खास तरह का जुग्राफिया भी अता किया है। पाकिस्तान में ये जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उस पर मैं थोड़ी थोड़ी बात करके बस अपनी बात को कंक्लूड कर दूंगा कि ये क्या होना चाह रहा है। पाकिस्तान आप जानते हैं बुनियादी तौर पे किस ब्लॉक का हिस्सा है, अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा। अमेरिका ने दुनिया को कंट्रोल करने के लिए मुसलमानों में, क्योंकि अमेरिका बाज़ औक़ात अपने गैर इस्लामी चेहरे की वजह से मुसलमान ममालिक में इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, लिहाजा उसके लिए उसे एक गैर मुस्लिम शख्सियत, एक मुस्लिम शख्सियत चाहिए होती है जो उसके मफादात को मुसलमानों के अंदर इम्प्लीमेंट करे। इमाम खुमैनी ने एक बात कही थी, इस्लाम अमरीकाई और इस्लाम मोहम्मदी। हमें समझ में नहीं आती थी ये इस्लाम अमरीकाई क्या होता है, इस्लाम तो इस्लाम है, ये अमरीकी इस्लाम क्या होता है, इस्लाम मोहम्मदी होता है, सारा इस्लाम तो वही है जो जनाब रसूल पाक लाए। नहीं, ये बात जो हमें पहले साबित नहीं हो रही थी, हमें इसका कामलन इदराक नहीं था, फहम नहीं था, आज हमें इसका इदराक होना शुरू हुआ है जब अमेरिका का प्रेसिडेंट मैदान में आता है, 40 इस्लामी ममालक मिलकर सऊदी अरब में कॉन्फ्रेंस मुनक़द करते हैं और उसकी सरबराही अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप करता है और एक नया अलायंस तश्कील देता है, तब दुनिया को पता चलता है कि इस्लाम मोहम्मदी कौन सा है, इस्लाम अमरीकी कौन सा है। वो सारे नाम नहाद मुसलमान जो अमरीका के शेल्टर तरह बैठ कर अमरीका की पॉलिसी को फॉलो करने का ऐलान करते हैं वो इस्लाम अमरीकाई है, जो उसके मुकाबले में खड़ा हो जाने वाला मकतब है वो इस्लाम मोहम्मदी है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर ये इम्तियाज है, खुदा ने हमें इस्लाम मोहम्मदी में से करार दिया। अब इस्लाम अमरीकाई ने जो दुनिया के अंदर नफूस पैदा करना है उसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, चूँकि इस पर भी बात मुख्तसर करनी है। मौजूदा जो हुक्मरान हैं पाकिस्तान के, ये बुनियादी तौर पर उसी इस्लाम अमरीकाई का एक सिस्टम का हिस्सा है। ये नज़रियाती और फिक्री तौर पर भी आले सऊद के जहनी गुलाम है, फिक्री गुलाम है। पाकिस्तान एक ऐसी कैफियत में है कि उसके जोग्राफिए की बुनियाद पर उसके पास कोई और चारा नहीं है मगर यह कि वो एक रीजनल ब्लॉक का हिस्सा बने। और रीजनल ब्लॉक वो है जिसके अंदर जो इनकलाबी ब्लॉक है, जो रहबरियत का ब्लॉक है, उसका मजबूत नक्श है। और उसके जो हुक्मरान हैं उनकी पूरी ख्वाहिश यह है कि वो अपने आप को उसी ब्लॉक के साथ रखें जिस ब्लॉक में वो पहले से रहा है, या जिस ब्लॉक में अमेरिका के आशीर्वाद है, जिस ब्लॉक में उनको आले सऊद के आशीर्वाद है, वो अपने आप को उस ब्लॉक से निकालना नहीं चाहते। और उसकी चंद दलीलों में से अगर मैं सिर्फ एक ही दलील बयान कर दूं कि जब ये आले शरीफ अपने लिए मुश्किल महसूस किया इन्होंने, तो किस जगह जहाँ पर इन्होंने मीटिंग्स की हैं? सऊदी अरब के अंदर। क्योंकि ये काम अमेरिका में नहीं हो सकता था, ये काम सऊदी अरब के अंदर हो सकता था। और आज चार दुनिया के ममालक, ये मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें कह रहा हूं, चार ममालक कोई जो नवाज शरीफ साहब को जानता है वो जानता है नवाज शरीफ एक जरूरतमंद आदमी नहीं है। वो जेल गया है, उसने घंटे नहीं गुजारे, बल्कि फौरन कहा कि मेरे साथ एग्रीमेंट करो, मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूं। वो एक औरत के बराबर भी जरूरत और हिम्मत नहीं रखता कि जो जैसे बेनजीर है, उसने कई साल जेल काटी है और बहुत छोटी उम्र में जेल काटी है, उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी। ये जो आज खड़ा होकर कभी जुडिशरी को ललकार रहा है, कभी फौज को ललकार रहा है, कभी रियासत को ललकार रहा है, ये जो आज इतने एतमाद के साथ चैलेंज पे चैलेंज दे रहा है, ये जो आज मुजीबुर रहमान बनने की बातें कर रहा है, इसको आशीर्वाद किसकी हासिल है? इसके पीछे सपोर्ट कौन है? इसके पीछे ताकत कौन है? तो मेरा ख्याल है हमें ये क्लियर होना चाहिए, ये आले सऊद के एजेंट हैं, इनके पीछे पहले आले सऊद हैं, उसके बाद अमेरिका है, इनके बुनियादी इक्तसादी रिलेशनिंग्स इंडिया के साथ हैं, और इनके पीछे फिक्री तौर पर इस वक्त इसराइल खड़ा है। हुक्मरान उस ब्लॉक के अंदर रखना चाहते हैं, ये एक टारगेट है इनका। और पाकिस्तान की कुछ मुश्किलात हैं, जैसे मैंने कहा कि इसकी एक मुश्किल ये है कि उसका जुग्राफिया ऐसा है कि वो चीन से जुदा नहीं हो सकता है, वो ईरान से जुदा नहीं हो सकता है। जी जुग्राफिया है, ये ख्वाहिश नहीं है, ये मजबूरी है, वो जुदा नहीं हो सकता है। आज अगर आप पाकिस्तान को जानते हैं, पाकिस्तान की एक मुश्किल कहें आप फौरी, बिलखसूस इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक मुश्किल फौरी क्या है? तवानाई का बोरान। तवानाई है जिससे इंडस्ट्री चलेगी, तवानाई है जिससे आपकी मशीनें चलेंगी, तवानाई है जिससे आपके बिजली के बोरान होंगे तो हर चीज हल होगी। तवानाई का बोरान इस खित्ते में इमीडिएट अगर हल करना हो, कौन हल कर सकता है? पाकिस्तान को? ईरान, क्योंकि अल्लाह ने उसे तवानाई के जराए दिए। लिहाजा पाकिस्तान की फितरी मजबूरी है कि वो रीजनल ब्लॉक का हिस्सा बने। पाकिस्तान को अगर इंडिया के चैलेंज का सामना है, पाकिस्तान को अगर अमेरिका की हेजमनी और चैलेंज का सामना है, तो इस खित्ते में कौन से दो बड़े ममालक ऐसे हैं कि जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर उसकी सपोर्ट कर सकते हैं? तो आपको फौरी ज़हन में आएगा कि एक चाइना हो सकता है, दूसरा फिर ईरान हो सकता है। और अगर ये ब्लॉक के अंदर चाहे तो कहीं ना कहीं इसके अंदर रशिया भी आ सकता है। तो ये जंग है इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। मौजूदा हुक्मरान ये चाहते हैं कि पाकिस्तान हतमन उसी ब्लॉक के अंदर रहे, वो हर सूरत अपने आप को उसी ब्लॉक में रखना चाहते हैं और उस ब्लॉक के इंटरेस्ट को पाकिस्तान में महफूज रखना चाहते हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त ये जो इदारों के अंदर एक तसादम की सूरत हाल है, उसके पीछे ये तसादम इस वक्त मौजूद है। लेकिन मैं मकतबे अहले बैत की बात करना चाहूंगा। मकतबे अहले बैत की बुनियादी मुश्किल क्या है? मकतबे अहले बैत पाकिस्तान के अंदर उनके लिए चैलेंज क्या है? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो आलमी ताकतें जिन्हें ये पता है कि उनके दुनिया के अंदर ख्वाबों को अगर किसी ने चकनाचूर किया है, तो दरअसल वो मकतबे अहले बैत है। हम अमूमन सवाल करते हैं मुझसे दोस्त, वो कहते हैं आगा जान, हम जहां पर भी ताकतवर हैं, हमने तो किसी ईसाई को भी दुख नहीं दिया है, हमने तो किसी मुसलमान को दुख नहीं दिया है, जहां भी हम ताकतवर हैं। आप अपना देख लीजिए, जहां गिलगित बल्तिस्तान में आप ताकतवर हैं, पारचनार में आप ताकतवर हैं, आपके हाथों से सब महफूज है, आप किसी पर जुल्म नहीं करते हो, आपकी श्रेष्ठ में नहीं है। लेकिन आपको क्यों निशाना बनाया जाता है? आपको क्यों टारगेट बनाया जाता है? आपको क्यों हिट किया जाता है? हर जगह आपके इज्तमात, आपकी शख्सियात, आपके इकदाम, आपके लोग, क्यों उनको हिट किया जाता है? सवाल है ना, ये सवाल किया जाता है, मुझसे भी सवाल किया जाता है। बुनियादी मुश्किल क्या है? बुनियादी प्रॉब्लम आपके साथ क्या है? तो फिर आपको यह समझ लेना चाहिए के दुश्मन को दो एहसास हैं, दो एहसास। एक दुश्मन को यह एहसास है वो आइडियोलॉजी जिसने पूरी दुनिया के अंदर उन्हें शिकस्त दी है, उस आइडियोलॉजी के मानने वालों की इतनी बड़ी तादाद है पाकिस्तान के अंदर, बस अगर ये स्ट्रेंथन हो गए, बस अगर ये ताकतवर हो गए, बस अगर ये मुनज्जम हो गए, बस अगर ये पाकिस्तान के डिसीजन मेकर बन गए, तो ये हमारे मुकाबले में खड़े हो जाएंगे। लिहाजा उस दुश्मन जिसने पूरी दुनिया में अली के मानने वालों से चोट खाई है, वो टारगेट रखता है पाकिस्तान के अंदर कभी भी अली के मानने वालों को ताकतवर ना होने दे, ताकि उस तरह का कोई चैलेंज उसे पाकिस्तान में सामना न करना पड़े। लिहाजा एक मुश्किल हमारी ये है, मकतब अहल बैत का वो पोटेंशियल, कि अगर हम अपने उस पोटेंशियल से आशना हो जाएं, इस वतन का कोई फैसला अली के मानने वालों के बगैर नहीं हो सकता है। लिहाजा वो नहीं हमें जाना चाहते इस समय। एक दूसरा, उन्हें पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें ये एहसास है कि एक ऐसी कम्युनिटी है, एक ऐसी मिल्लत है, एक ऐसी अजीम ताकत है पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का नेचुरल डिफेंस है। अपने नेचुरल डिफेंस, हाँ नेचुरल डिफेंस, वो फौज के जरिए से नहीं है। मसलन अगर आप गिलगत बल्तिस्तान में बैठे हैं, तो बॉर्डर के ऊपर अगर फौज ना भी हो तो क्या गिलगत और बल्तिस्तान के लोग इस वतन का दिफा करेंगे या नहीं करेंगे? पारा चनार में अगर फौज ना भी हो, क्या ये लोग इंडिया और अफगानिस्तान के मुकाबले में अपने खित्ते का दिफा करेंगे या नहीं करेंगे? अगर क्वेटा की बात करें और बलूचिस्तान की बात करें, उस बलूचिस्तान के अंदर, कि जिस बलूचिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि पाकिस्तान का कौमी तराना और पाकिस्तान का परचम लहराना एक जुर्म बना दिया गया हो, उस जगह पर वही मिल्लत इस वतन की हिफाजत कर सकती है ना, कि जो 100-100 लाशें उठाए लेकिन पाकिस्तान का परचम बुलंद भी रखे और उन लोगों को पाकिस्तानी परचम के अंदर ढांक कर उनकी तदफीन करे, गोया ये साबित करे इन शहादतों के बावजूद भी पाकिस्तान से उनकी कमिटमेंट कम नहीं हो सकती। तो ये नेचुरल डिफेंस है ना, जो ये मेरा फिक्र है, जो इस वतन को कमजोर करना चाहता है वो मकतब अहले बैत को कमजोर करना चाहता है। आप चूंकि इस वतन का फितरी दिफा है, आपको टारगेट करेंगे तो इस वतन को टारगेट करेंगे, आपको वीक करेंगे तो इस वतन को वीक करेंगे, आपको कमजोर करेंगे, निशाना बनाएंगे तो इस वतन को निशाना बनाएंगे। उन्हें यह जान लेना चाहिए, ये अली का मकतब है, ये हुसैन का मकतब है। इस मकतब में मरने से कमजोरी नहीं आया करती, बल्कि ताकत आया करती है। और खुदाबंद करीम का लुत्फ है, हमने एक सफर का आगाज किया है, इज्तमाई सियासी सफर का आगाज किया है। वो परचम जो शहीद हुसैनी और शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली ने बुलंद किया था, हमने उस परचम को दोबारा बुलंद किया है। हमने अपनी सियासी और इज्तमाई हवियत और शनाख्त का आगाज किया है। हम अपने शनाख्त के मुताबिक हमने पाकिस्तान में एक सफर शुरू किया है, और उसी पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर इतनी चेंज आई है कि जिस पाकिस्तान में हमारे खून से होली खेलने के बावजूद वो मुअज्ज़ज़ हुआ करते थे और हमारी कोई बात भी नहीं किया करता था, आज चंद कदम उठाने के बाद हम उस पाकिस्तान में इतने दखील हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े हुए, जब नहीं खड़े हुए तो पाकिस्तान में तालिबान बनाए गए, पाकिस्तान में मिलिटेंट्स बनाए गए, पाकिस्तान में लश्कर बनाए गए तकफीरी ग्रोहों के, रियासत की सपोर्ट उनको हासिल रही, उन्होंने पाकिस्तान में मकतब अहले बैत के मानने वालों का कत्लेआम किया और पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में रखी। हम खड़े होना शुरू हुए, हमने रोल प्ले करना शुरू किया। ये मजलिस वहदत का रोल नहीं है, ये आईएसओ का रोल नहीं है, ये इस मकतब का रोल है। हमने शुरू किया, वजीर आजम नवाज शरीफ चाहता था, उस वक्त का आर्मी चीफ राहील शरीफ चाहता था कि हम अपनी फौज को किराए की फौज बनाकर यमन की जंग में भेजें, आले सऊद के लिए भेजें। वो मिलकर भी, आर्मी चीफ और वजीर आजम मिलकर भी ये काम नहीं कर सके, इसलिए कि अली के शिया बेदार होना शुरू हो गए थे। आपको याद होगा उस वक्त के वजीर दिफा ने पार्लियामेंट के अंदर कहा, हमें पता है कि अगर हम वहां की जंग में इन्वॉल्व होंगे तो पाकिस्तान में शिया और सुन्नी मसला बनेगा। उन्होंने पहली बार यह एहसास हुआ कि पाकिस्तान में शियों को कंसीडर करना पड़ेगा, उनकी मर्जी के बगैर हम ये फैसला नहीं कर सकते। इन्होंने चाहा मिलकर दहशत गर्दों से मुजाकरात करें, आपको याद होगा। हमने कहा नहीं, दहशत गर्द शैतान है, शैतान से मुजाकरात नहीं होते, शैतान से बातचीत नहीं होती। और फिर आपने देखा ये सारे मिलकर एपीसीज करते रहे, और इन्होंने कहा कि दहशतगर्दों से मुजाकरात करें, उन्हें मेन स्ट्रीम के अंदर लेकर आए, उन्हें यूनिफॉर्म पहनाना चाहते थे, लेकिन हम खड़े हुए थे, आप खड़े हुए थे। आपने कराची के अंदर प्रोग्राम किया था, हैदराबाद में किया था, एक मूव चलाई थी, अहले सुन्नत को साथ खड़ा किया था और फिर एक माहौल बनाया। इत्तफाकन एक वाकया भी हो गया, लेकिन उसके पीछे आपकी एक पूरी एफर्ट थी कि जिसके नतीजे में ये चाहते हुए भी उनसे मुजाकरात करके उनको यूनिफॉर्म नहीं पहना सके और पाकिस्तान में पहली बार ज़र्ब-ए-अज़ब और रद्दुल फसाद का आगाज हुआ। आपका रोल है, और मैं आज के तीन रोल्स की बात करना चाहता हूँ और इस पर अपनी बात को एंड करता हूँ। दुश्मन को खौफ है, वो कहते हैं पाकिस्तान की मिल्लत तशय्यो मकतब अहले बैत, कभी भी शहीद हुसैनी का परचम हाथों में बुलंद करके पाकिस्तान का स्टेक होल्डर न बने, पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग में न जाए, पाकिस्तान के फैसला साजी के मराकज में न जाए, क्योंकि अगर ये वहाँ पर चला गया तो फिर पाकिस्तान आले सऊद का गुलाम नहीं बनेगा, फिर पाकिस्तान अमरीकी ब्लाक का हिस्सा नहीं रह सकता, फिर पाकिस्तान तकफीरियों की आमाजगा नहीं रह सकता, क्योंकि अगर अली के शिया फैसला करने वाले होंगे तो इस पाकिस्तान को उनकी गुलामी में नहीं देंगे, इस पाकिस्तान को किसी का आलाकार नहीं बनाएंगे, इस पाकिस्तान की इज्जत और कुदरत का सौदा नहीं करेंगे। लिहाजा वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मकतब अहले बैत को पाकिस्तान के अंदर वो रोल प्ले करने पर मजबूर किया जाए जिसके नतीजे में हमारे अंदर ये एहसास हो हमारी ना कोई सियासी शनाख्त है, हमारी ना कोई इज्तमाही शनाख्त है, हमारी ना कोई कौमी शनाख्त है, हम हर लिहाज से कोई पीपल पार्टी के अंदर, कोई नून के अंदर, कोई काफ के अंदर, एक्स वाई जेड के अंदर तकसीम हो के अपने आप को उनका हिस्सा बनाएं, अपने मकतब को अपनी शनाख्त करार ना दे। खुदा के लुत्फ से हमने इस शहर को तोड़ने का आगाज कर दिया है और अगर हम ये तोड़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की फैसला साजी अली की शियों के बगैर नहीं हो सकेगी। मैं एक मिसाल दे के अभी ताजा वाकयात में एंड करूंगा। दुश्मन को इससे खौफ है, यही खौफ है जिसके लिए वो मुझे उठाते हैं, यही खौफ है जिसके लिए वो आपके लोगों को शहीद करते हैं, यही खौफ है जिसके लिए वो मकतब अहले बैत को निशाना बनाते हैं। वो नहीं, वो डरते हैं कि अगर अली के शिया पाकिस्तान में कुदरतमंद हो गए, पाकिस्तान आले सऊद और अमेरिका की कॉलोनी नहीं रहेगा। मैं अभी तीन चीज़ों की तरफ इशारा करके, और ये तीन एक एक मिनट में शायद हो जाएं, अभी ताज़ा तीन डिवेलपमेंट्स हैं। हमें कहा जाता था, मैं बलूचिस्तान जाता था, वो कहते थे आगा साहब हम यहाँ एक छोटी सी अकलियत हैं, हमसे कुछ नहीं होता, हम यहाँ एक ख़ास रसल हैं, रंग हैं, हमारा यहाँ कोई रोल नहीं है, आओ देखो क्या रोल होता है। मैं अभी बलूचिस्तान से आ रहा हूँ, मैं क्वेटा से आ रहा हूँ। आज से चंद साल पहले 10 जनवरी को वो बड़ी शहादत का वाकया हुआ था जिस पर पहली बार क्वेटा के लोग एक इलाके से निकल कर एक मिल्लत में ढले थे। आप भी खड़े हुए, पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ, 770 मकामात पर मकतब अहले बैत के लोग निकले और फिर उनके साथ सब निकलना शुरू हो गए। जब ये निकले तो आपको याद होगा उस वक़्त का असलम रईसानी जो कहता था अगर इनको आंसू पूछने के लिए टिशू पेपर चाहिए तो मैं टिशू पेपर के ट्रक भेजने के लिए तैयार हूँ, यूं इस मिल्लत की तोहीन करता था वो असलम रईसानी जिसके 63 मेंबर्स में से 62 मेंबर वजीर थे। वो बलूचिस्तान और पाकिस्तान की सरजमीन पर बतौर वजीर आला कदम नहीं रख सका था चूंकि आप खड़े हो गए। याद है आपको, वो पुरानी बात हो गई, आज की बात करता हूँ, अभी 10 जनवरी की बात करता हूँ। मैं वहाँ क्वेटा के अंदर था, अभी वहाँ के हुक्मरान सनाउल्लाह ज़हरी ने आले सऊद और नून लीग की इमा पर वहाँ पर जो अंदाज़ इख्तियार किया था, जिस तरीके से हमारे लोगों को निगलेक्ट कर रहे थे, जिस तरीके से तोहीन आमेज़ अंदाज इख्तियार कर रहा था, आज आपके इल्म में होगा कि बलूचिस्तान की हकूमत की तब्दीली में सबसे ज़्यादा रोल जिन दो शख्सियात ने प्ले किया है उनमें से एक अब्दुल कदीर बज़िंजू है और दूसरा मजलिस इलाहे मुस्लिमीन के नुमाइंदे सैयद रज़ा हैं, और इन्होंने मिलकर नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश भी किया, पास भी करवाया, और कल तमाम MPAs मजलिस वहदत की दावत पर, यानी तशय्यो की दावत पर, यानी अली के शियों की दावत पर अपने घरों को छोड़कर आपके मरकज में इकट्ठे हुए हैं और मिलकर उन्होंने नए वजीर आला का फैसला किया है। नए वजीर आला का फैसला करने के लिए जो जगह चुनी गई है उस जगह को भी आपकी मेजबानी हासिल थी, आप लोग उसको मेजबानी कर रहे थे। ये तब्दीली है या नहीं है? ये स्टेक होल्डर बनना है या नहीं है? ये उस चीज से हमें निकालना है जो हमें बावर करा दिया गया, वी कांट डू, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के दोस्त यहां पर बैठे हैं, अभी आपके इल्म है वहां पर टैक्स का कानून नाफिज किया गया, आईनी हक नहीं दिया गया, टैक्स लगा दिया गया, वहां मूवमेंट चली, सईद अली रिजवी खड़े हुए, तमाम मकातब फिर खड़े होना शुरू हो गए, तमाम सोसाइटी के तबकात खड़े होना शुरू हो गए, तमाम पार्टियां खड़ी होना शुरू हो गई, लेकिन इसलिए खड़ी हुई कि परचम सैयद अली के हाथ में था, इसलिए कि परचम आपके नुमाइंदों के हाथ में था। और जब वो खड़े हुए 17 दिन के एजिटेशन के बाद वजीर आला को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके मुतालबात को मानना पड़ा और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बाकायदा आईनी तरमीम करके वो फैसला वापस लेना पड़ा है जिसके बारे में उसने कहा था मैं मर जाऊंगा ये फैसला वापस नहीं लूंगा, और आपने देखा वो मरा भी नहीं, उसने फैसला भी वापस लिया और तमाम असम्बली को एक बार फिर उसी जगह पर आना पड़ा जिसके लिए आपने चैलेंज दिया था, मजलिस ने चैलेंज दिया था, मकतब अहले बैत ने चैलेंज दिया था। यहाँ की तकदीर का फैसला भी आपने किया है। और अभी मैं ताज़ा अगर मिसाल दूँ, पाकिस्तान की 40 अपोजिशन पार्टीज जिनमें लीडिंग पार्टीज पीपल्स पार्टी शामिल, पीटीआई शामिल, जमात इस्लामी शामिल, एमक्यूएम के सारे ग्रोह शामिल है इत्तेफाक से, ये सारे मिलकर लीडिंग पार्टीज है ना, ये सारी पार्टियां इकट्ठी होती हैं। आपको याद होगा हमने पाकिस्तान में तकरीबन 4 साल पहले एक मौकफ लिया था सानिया मॉडल टाउन के हवाले से, हमने कहा था ये जुल्म हुआ है, इस जुल्म के करने वालों को लटकना चाहिए ताकि पाकिस्तान में ये जुल्म की रस्म आगे ना बढ़ सके, इसलिए कि हम मजलूम हैं, हमें पता है मजलूम के साथ खड़े नहीं होंगे तो हमारे साथ भी खड़ा कोई नहीं होगा। हम अली की सीरत पर चल ही उस वक्त समझते हैं जब हम हर जालिम के दुश्मन बने और हर मजलूम के हामी बने। हमने जो बात 4 साल पहले की और ये लीडिंग पार्टीज मजाक उड़ाती रहीं और हमें कहती रहीं कि ये क्या कर रहे हो, क्या एक हफ्ते में 2 मरतबा जरदारी साहब ने मॉडल टाउन में कादरी साहब के घर जाकर और इमरान खान साहब ने कादरी साहब के घर जाकर और एमकेएम के सारे धड़ों ने कादरी साहब के घर जाकर वही बात नहीं कह दी जो हम 4 साल पहले कहा करते थे? गोया आपकी बात की हकानियत साबित हुई है और आज उन 40 पार्टियों ने मिलकर एक 9 रुकनी अपोजिशन का कोर कमेटी तश्कील दी है जो पूरी अपोजिशन के मुश्तरका फैसले किया करेगी। और आज आप अपनी ताकत देखो, 40 पार्टियों ने मिलकर 9 अफराद को इख्तियार दिया, फिर उन 9 अफराद ने मिलकर 6 अफराद की एक टीम को इख्तियार दिया कि ये डिसीजन मेकर है अपोजिशन की तमाम जमातों की बिहाफ पर, ये कोई भी मूवमेंट चला सकती है, कोई भी इजलास तलब कर सकती है, कोई भी फैसला कर सकती है। आज अगर पूरे पाकिस्तान में अपोजिशन की उस मूवमेंट का इख्तियार 6 लोगों को है, उन 6 में से 1 आपकी मिल्लत का नुमाइंदा है, आपके मकतब का नुमाइंदा है, आपकी जमात का नुमाइंदा है और आज आप पाकिस्तान की कौमी सियासत में डिसीजन मेकर बन रहे। बस मैं इससे एंड करना चाहूंगा, यह खौफ है दुश्मन के दिल में और अपनी बात को इस अंदाज से एंड करते हुए अगर कोई सवाल होगा तो बोलूंगा कि एक बात आपको समझनी है। मैं ये एक वाक्या बयान करते हुए अपनी बात को एंड करता हूँ। ये वाक्या अद्दी बिन हातम से मरबूत है। अद्दी बिन हातम अली के शिया हैं, अद्दी बिन हातम अली के चाहने वाले हैं, अद्दी बिन हातम अली के आशिक हैं। उनका जुर्म ये था कि उनके दुश्मन ने यह फैसला किया, मेरे अल्फाज सुनिएगा, अली के दुश्मन ने यह फैसला किया कि मैं इस शख्स से अगर मुझे ताकत मिली ज़रूर इंतकाम लूँगा। खुदा हमें ऐसा बनाए कि आज के अली का दुश्मन ये अहद करे कि वो हमें रास्ते से हटाएगा। ये एक मियार है, अली का दुश्मन किसी के बारे में ये अहद करे कि मैं इसे रास्ते से हटाऊंगा तो अपने मकसद में कामयाब होगा, इसका मतलब है अली का चाहने वाला अली के दुश्मन के रास्ते में रुकावट बना हुआ है। खुदा हमें अली के चाहने वाला बनाए और अली के दुश्मनों के रास्ते की रुकावट बनाए ताकि अली के दुश्मन हमें अपने रास्ते से हटाने का फैसला करे। ये एजाज होता है। अद्दी बिन हातिम सफीन में अली के साथ, नहरवान में अली के साथ, जमल में अली के साथ, इस तरह शुजात की, इस तरीके से मैदान में खड़े रहे कि अली के दुश्मन ने यह अहद किया कि अगर मुझे इख्तियार मिला मैं बदतरीन इंतकाम का निशाना लूंगा अद्दी बिन हातिम से। वक्त ऐसा आया, अद्दी बिन हातिम को गिरफ्तार कर लिया गया, मौला अमीर अल मोमिनीन शहीद हो चुके थे। अद्दी बिन हातिम को इस तरह गिरफ्तार करके कसर सब्ज में लाया गया कि अद्दी बिन हातिम के पाँव में बेड़ियाँ थीं, हाथों में कड़ियाँ थीं, जिस्म जंजीरों में और तौक में जकड़ा हुआ था और इस तरीके से कसरे सब्ज में लाया गया कि दोनों तरफ नंगी तलवारों लिए जल्लाद खड़े थे ताकि शुजा से शुजा इंसान भी दहशत ज़दा होकर अपने हवास खो बैठे और जब तख्त पर बैठे हुए बंदे से बातचीत हो तो वो बातचीत भी ना कर सके। अली का ये शिया रिवायात ये हैं, इस तरीके से पेश हुआ कि अगर जितनी उसको जो भी वहां पर दाखिल होता था सर झुकाकर अपने अंदर तजव पैदा करके अपने अंदर इनकसारी पैदा करके दाखिल होता था, अली का शिया इस तरीके से दाखिल हुआ है जितनी जंजीर इजाजत देती थी, जितना तौक इजाजत देता था, अपने सर को बुलंद करके दरबार में गया कि अली के दुश्मन ये एहसास भी ना करे कि मैं किसी तरीके से उसके सर से खौफजदा हो गया। सलावत पढ़िएगा। गौर कीजिएगा, जब सामने लाए, हमें इस जुर्म के लिए तैयार होना है, जब सामने लाया गया कहा अदी क्या अली की मोहब्बत तुम्हारे दिल में आज भी इसी तरह मौजूदा है? कहा जवाबन अद्दी ने कि अली की मोहब्बत ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई दुनियादार हमारे दिलों से निकाल सके। तख्त पर बैठे ने फिर सवाल किया, अब ताना दिया, कायन तारिफ, वो तुम्हारे तीन बेटे क्या हुए? तारिफ, तरफ और तुरैफ क्या हुए? वो तीन तेरे बेटे किधर गए? अद्दी ने जवाब दिया, मेरे वो तीनों बेटे वक्त के इमाम की नुसरत करते हुए जामे शहादत नोश कर गए। अब मजीद ताना दिया, गौर करें, मजीद ताना दे के कहा, अद्दी, अली ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया कि अली ने तुम्हारे तीनों बेटों को जंग की भट्टी में झोंक दिया लेकिन हसन और हुसैन को जंग की आग से महफूज रखा? जवाबन अद्दी ने बुलंद होकर कहा, नहीं, मैंने अली के साथ इंसाफ नहीं किया कि आज अली तो शहीद हो गए हैं, अली का चाहने वाला अभी भी जिंदा है। तब एक अजीबोगरीब बातचीत हुई, अद्दी को मुखातब करके कहा गया, बताओ क्या वाकई जमाने के उतार चढ़ाव ने अली की मोहब्बत को तुम्हारे दिल से कम नहीं किया है? बड़ा नेचुरल सवाल है, एक बंदा फौत हो जाता है ना, आपका करीबी तरीन भी हो, जमाना एक मरहम है, आहिस्ता आहिस्ता उसका याद कम होना शुरू हो जाती है। कहा क्या वाकई जमाने के उतार चढ़ाव ने अली की मोहब्बत को तुम्हारे दिल से कम नहीं किया है? तारीखी जवाब दिया है और यही जवाब आज के फिरौनों को देने वाला है। अद्दी ने बुलंद होकर कहा कि सुनो, अली की मोहब्बत हमारे दिल में मौजूदा समंदर की तरह है, अली का नाम हमारे समंदर में जोश का सबब है। जैसे जैसे अली का नाम लिया जाता है हमारे दिल के समंदर में जोश आने लगता है, जैसे जैसे अली के नाम में इजाफा होता है ऐसे ऐसे हमारे दिल के समंदर के जोश में इजाफा होना शुरू हो जाता है। और कसम बखुदा हमारा ये जिस्म गोश्त और लहू से नहीं बना बल्कि हमारा ये जिस्म विलायत अली अपना अभी तालब से बना है। तुम गोश्त को और लहू को हमसे जुदा कर सकते हो, विलायत अली को हमसे जुदा नहीं कर सकते हो। बस ये हमारा जुर्म है, इस जुर्म की हमें सज़ा मिली है, इस जुर्म की आपको सज़ा मिलती है, इस जुर्म की सज़ा मिलेगी, हम इसके लिए तैयार हैं, हम इसके लिए आमादा हैं, लेकिन हम अली के रास्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, हम निज़ाम विलायत फ़कीह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, हम पाकिस्तान में अपनी इज़्ज़त नफ्स का रास्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, और हम एक ऐसी आज़ाद मिल्लत हैं, एक ऐसी पावर हैं, एक ऐसी ताकत हैं, हमें यकीन है अगर हम इस पाकिस्तान के अंदर ताकतवर होंगे तो इस पाकिस्तान को भी बचाएंगे और इस पाकिस्तान के फैसलों को भी बचाएंगे इंशाल्लाह। इसको कभी भी इंडिया का गुलाम नहीं बनने देंगे, इसको कभी भी आले सऊद का नौकर नहीं बनने देंगे, इसको कभी भी अमरीकी लौंडी नहीं बनने देंगे। एक आज़ाद मिल्लत के तौर पर पाकिस्तान बावकार होगा अगर मकतब अहले बैत पाकिस्तान में ताकतवर और कुदरतमंद होगा। बस इंशाअल्लाह मैं आज की इस गुफ्तगू को, चूँकि बहुत सारे दीगर मौजूदात उनको छोड़ते हुए ये समझता हूँ कि हमें ये फ़ैसला करना है, इस रस्ते में मुश्किलात आएंगी, इस रस्ते में कुर्बानियाँ आएंगी, इस रस्ते में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अगर हमें ये यकीन हो हमारा रास्ता दुरुस्त है, अगर हमें यकीन हो, मैं एक सवाल करते हुए बात को ग्रैंड करूँ, सवाल करते हुए, क्या एक कमज़ोर मिल्लत अपने ज़माने के इमाम की हामी नासिर हो सकती? बाज़ का एक बंदा खड़ा होता है इलेक्शन में, उसे गली में कोई नहीं जानता, हम हंसते हैं ना यार, इसे गली में कोई नहीं जानता, ये इलेक्शन लड़ना चाहता है, इसे तो अपने घर में कोई नहीं जानता, ये इलेक्शन लड़ना चाहता है। हमारी भी यही हालत थी, हम कहते थे हम पाकिस्तान में 5 करोड़ हैं, हम कहते थे हम पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, हम कहते थे पूरे पाकिस्तान के हर इलाके में हम मौजूद हैं। अमलन हमारी कोई हैसियत नहीं थी, अगर कोई हैसियत होती तो पाकिस्तान में कभी भी तालिबान और अलकायदा के लश्कर नहीं बनाए जा सकते थे, कभी भी मदरसों से तकफीरी लश्कर डेवलप नहीं हो सकते थे, कभी भी रियासत उनकी सरपरस्ती करते हुए नजर नहीं आ सकती थी, ये हमारा होना ना होना था। अब हमारा होना अमलन होना शुरू हुआ है, अब इंशाल्लाह अगर हम पाकिस्तान में एक डिसीजन मेकर बनेंगे तो अगर मैं यूं कहूं कि जैसा मैंने कहा कि कमज़ोर मिल्लत अपने ज़माने के इमाम की नासिर नहीं हो सकती, हमारी पाकिस्तान में ताकत की एक मिसाल ये है, हम अपने ज़माने के इमाम को कहें मौला ये हमारा मुल्क है, मौला ये हमारी पाक सरजमीन है, मौला ये हमारा वो मुल्क है जो हमारे वजीफे की सरजमीन है। इस मुल्क में अमरीकी इस्तेमार, आलमी इस्तेमार, इस मुल्क में महदवियत की दुश्मन कुव्वतें अपना गलबा हासिल नहीं कर सकती, जैसे लबनान में अली के चाहने वालों की मौजूदगी में आलमी ताकतें अपना गलबा हासिल नहीं कर सकती, जैसे वो इमाम की सरजमीन बन सकती है, ऐसे ये इमाम की सरजमीन बन सकती है। और हम एक ताकतवर मिल्लत की सूरत में अपने ज़माने के इमाम को ये तोहफा दें, मौला जिस मुल्क में हम बसते हैं इस मुल्क में आपके खिलाफ फैसला नहीं हो सकता है, ये मुल्क आपकी इताअत के लिए आमादा होगा अगर हम ताकतवर होंगे इंशाल्लाह। कमज़ोर मिल्लत ज़माने के इमाम की नासिर नहीं हुआ करती है। खुदा हमें एक ताकतवर मिल्लत बनने की तौफीक दे ताकि हम उस आलमी इक्वेशन के अंदर भी खड़े रहें, ताकि हम खुद भी एक कुदरतमंद मिल्लत बने और ताकि हम इस वतन को महफूज करने का बंदोबस्त भी इंशाल्लाह कर सके। खुदा बंद करीम आपका हमारा हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।